Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki taza ant mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार चंद्रशेखर. चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका.
थैंक यू.
आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
बेंचमार्क इंडिसीज राइज आफ्टर अ थ्री डे हायटस. सेंसेक्स एंड्स 260 पॉइंट्स हायर. निफ्टी टॉप्स टू 22,050 पॉइंट्स. इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जंप बाय 3.66 बिलियन डॉलर्स टू 641.59 बिलियन डॉलर्स. एंड गोल्ड फ्यूचर्स सर्ज 1,142 रुपीज टू 72,785 रुपीज पर 10 ग्राम्स. सिल्वर फ्यूचर्स ऑल्सो जंप ओवर 1%.
घरेलू शेयर बाजार में पिछले तीन सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थमा. निवेशकों की लिवाली से सेंसेक्स 260 अंक उछलकर हुआ बंद. निफ्टी 22,050 के स्तर को कर गया पार. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3,66 अरब डॉलर बढ़कर 641,59 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा. और सोने का मूल्य 1,142 रुपए बढ़कर 72,785 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा. चांदी भी लगभग 1% उछली. पिछले कुछ सत्रों में हुई जोरदार गिरावट के बाद आज निवेशकों द्वारा प्रमुख शेयरों की खरीदारी किए जाने से शेयर बाजार में लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक आखिरकार बहुत के साथ बंद हुए. हालांकि ये कारोबारी सप्ताह पिछले दो महीने के दौरान सबसे बड़ी मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है. इस सप्ताह के दौरान बाजार लगभग 2% घाटे में रहा. उधर आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों द्वारा लिवाली की गई प्रमुख शेयरों की, जिसके चलते बीएसई का सेंसेक्स 260 अंक यानी 0.36% बढ़कर 72,664 अंक पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 98 अंक यानी 0.44% बढ़त के साथ 22,055 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चले तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कहीं बेहतर रहा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों सूचकांक 0.8% लाभ के साथ बंद हुए.
Benchmark equity indices ended higher today, led by gains in heavyweight stocks. However, the indices logged their worst week in 2 months as they lost nearly 2% this week. Recovering from the sharp decline in the previous trade, the 30-share BSE Sensex climbed 260 points or 0.36%, settling at 72,664. Meanwhile, the broader NSE Nifty saw an increase of 98 points or 0.44%, closing at 22,055. From the Sensex pack of 30 companies, NTPC, Power Grid, JSW Steel, Asian Paints and ITC were among the major gainers. In contrast, TCS, Infosys, Wipro, HDFC Bank and Mahindra & Mahindra were among the biggest laggards. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index and the small-cap rose 0.8% each. And the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, power index rose 1.5%, oil and gas jumped 1.4%, commodities rose 1.3%. On the other hand, information and technology index declined 0.9%, realty cracked 0.6% and tech index fell by 0.26%.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 83.50 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 105.27 पर चल रहा था.
Let's have a look at another currency, this time from the UK, the pound. The pound rose today after data showed that the British economy beat expectations in the first quarter of the year, growing 0.6% and leaving behind 2023's mild recession. Sterling was last up 0.1% at $1.2537, having traded at $1.2516 before the figures were released. The pound is slightly higher so far in May, but has fallen 1.5% this year as the dollar has risen on the back of a strong U.S. economy. The Office for National Statistics data showed that Britain's economic output grew by a stronger than expected 0.6% in the January to March period compared to the previous quarter. The Bank of England has yesterday left the key rate unchanged at 5.25%. Bank of England said that its Monetary Policy Committee voted 7-2 to keep rates at a 16-year high of 5.25%. The Monetary Policy Committee has now kept rates on hold at 6 meetings in a row, but it hinted that a first cut since March 2020 at the onset of the COVID-19 pandemic could come as soon as its next meeting in June. Chandrasekhar ji, let's try and tie up all the stories together, including what the Bank of England has decided to leave the repo rate, the discount rate, unchanged at 5.25 to 5.5%. Our central bank has also taken a similar decision. The key difference, of course, is that India is in a growth trajectory of over 8%, whereas UK has now emerged from a mild recession. They were in a technical recession where for 2 months they were in negative growth, but now it seems they have in positive growth territory now with 0.6%. Let's talk about central banking decisions. How important is sticky inflation for RBI governor and, for that matter, the governor of the Bank of England?
Well, it's very important. You know, central bank, you know, they give a signal to the markets. And as far as the current indications are concerned, that you have said that this Bank of England has decided to keep the repo rate unchanged. But, you know, they have also indicated that they could do something in June. And our monetary policy review is due in on June 5th or 7th, in the first week of June. And also, if we look at the U.S. Fed, there are also indications that U.S. job data is good. And there are indications that there could be the central bank across the world may go in for some rate cut at this point of time. Maybe in June. I mean, people are, experts are, they are of the opinion that some rate cuts could be coming in June. And if that happens, that would be good for the global market, that would be good for our markets, and that would be good for everyone. Because RBI has been holding on to the rate, the repo rate at 6.5% since February 2023. It's more than a year that the rates have been kept at the elevated level.
यहाँ पर घरेलू बाजार पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे चंद्रशेखर जी. पिछले कुछ सत्रों में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी और आज लिवाली फिर से लौटी है. क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आज की लिवाली के पीछे, क्या कारक बदल गए?
कारण तो देखिए, ग्लोबल और डोमेस्टिक जो दोनों ही कारण जो हैं वो तो जैसे हमारा सेंसेक्स करीब करीब मतलब 2500 पॉइंट के करीब इधर कुछ सत्रों में गिर गया था, तो उसका कोई कारण नहीं था. वो मे बी लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग आई थी और शायद कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज इमर्ज कर रही हैं, ये एक्सपेक्टेशंस है लोगों में. बट वो तो जो भी होगा वो रिजल्ट जून में पता लगेगा, लेकिन अभी जो है स्पेकुलेशन के आधार पे इस तरीके की वो हो रही है. अच्छा, एक जो मेन कारण ये था जो हमारा सेंसेक्स गिरा है इधर कुछ सेशन में, कि एफआईआईज ने विड्रॉ किया है पैसा. एक आकलन के मुताबिक एफआईआईज ने करीब 22,000 करोड़ रुपए जो है कुछ सेशन में पैसा निकाला है, और कल ही शायद 7,000 करोड़ के करीब कल विड्रॉ किया है. तो एक वो कारण है जो हमारा सेंसेक्स गिरा है. लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा रहे हैं, और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अराउंड 16,000 या 17,000 करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने पैसा जो है वो डाला है. दूसरी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी है मार्केट में, तो इसलिए जो ये हमने देखी, जो बिकवाली देखी है वो ठीक है, क्योंकि कोई और इंडिकेशन ऐसा नहीं है जो हमें ये इंडिकेट करे कि मार्केट जो है वो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड्स अप है. जो कंपनीज की जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आ रही हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, या एनुअल रिजल्ट्स जो अनाउंस हो रहे हैं वो सब भी अच्छे हैं. दूसरी बात, हमारा जो आरबीआई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जून में आरबीआई जो है वो रिपो रेट काटेगा, तो ये भी एक इंडिकेशन है। दूसरा जो यूएस फेड का इंडिकेशन है, यूएस में जॉब डेटा जो है अच्छा हुआ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ये इंडिकेट किया है शायद जून में कुछ रेट कट हो, तो सारे जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं प्लस जो मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है जैसे यूएस है, तो यूएस फ्यूचर्स जो है जो इंडिकेट करता है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिटरी होने का।
What about quarterly earnings, the fourth quarter earnings? You have companies like Tata Motors, ABB India, Bank of Baroda, even though it declined by 3% today, they have shown net profit margins, which is in the positive territory. Do you feel that there will be a breakout now, especially after the market fell yesterday by more than 1,000 points? It went up by 260 points today. Looking at next week, starting Monday, do you feel that the markets will not pick up pace? Despite the volatility we're seeing in the markets, VIX is at 18.5.
Yeah, VIX is important, you know, and VIX become, because, you know, the results which we got today was this Bank of Baroda and Tata Motors. You know, earlier SBI results were also good, and the other companies too, like HDFC or there are other banks also and other companies also, they have reported good results, quarterly results as well as annual results. They have, the company, the corporate sector is doing well. And as far as the VIX is, because, you know, VIX is an indication of the market fear. So market fear is because of speculation activities, and you know VIX is calculated on the basis of the order book in Nifty options. So that's how the traders, you know, take positions. So VIX is not a good sign that VIX is up. It is an indication of the fear. But overall, if we see, there are no technical reasons for people to get jittery, because markets will stabilize.
चंद्रशेखर जी, यहां यानी आपने कहा कि जो विक्स है उसका ऊंचा स्तर होना बहुत अच्छा नहीं है। यहां हम यह श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि विक्स क्या दर्शाता है, और इसका ऊंचा होना आंतरिक कारकों की वजह से रखा जा रहा है या आकलन किया गया होगा, या जो बाह्य कारक हैं उनके चलते यह ऊंचा चल रहा है।
विक्स इंडिकेट करता है फियर फैक्टर, तो जितना ज्यादा विक्स हाई होगा,
फियर फैक्टर यानी उतार चढ़ाव की स्थिति, अनिश्चितता
की स्थिति इंडिकेट करता है। अच्छा, विक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? विक्स को जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शंस में जो है निफ्टी ऑप्शंस में वो पोजीशन बनाते हैं, तो उनके ऑप्शंस में वो कितना प्राइस ऑप्शन के लिए देने को रेडी होते हैं वो उनकी ऑर्डर बुक के हिसाब से देखा जाता है कि विक्स का कैलकुलेशन होता है। तो विक्स ये एक फैक्टर है कि विक्स जब लो रहता है इसका मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी है, थिंग्स आर स्टेबल। लेकिन जब विक्स हाई होता है इसका मतलब कि मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल है, स्टेबिलिटी है, देयर इज अ फियर अमंग द ट्रेडर्स, सो दे टेक पोजीशंस। सो वंस दे टेक पोजीशंस दे बाय और दे सेल ऑप्शंस अकॉर्डिंगली व्हाइल टेकिंग द पोजीशन। तो उसमें जो ऑर्डर बुक में जो सडन एक मूवमेंट आती है ऑप्शंस में, तो वो विक्स उसको कैलकुलेट किया जाता है, उससे ट्रेडर्स के जो साइकोलॉजी को वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है।
चंद्रशेखर जी, येस्टरडे वी सॉ द वीकली एक्सपायरी फॉर द डेरिवेटिव्स सेगमेंट, यू ऑल्सो द मंथली एक्सपायरी एज वेल। व्हाट टाइप ऑफ ओपन इंटरेस्ट आर वी सीइंग व्हेन इट कम्स टू द कैश मार्केट कमिंग नेक्स्ट वीक? बिकॉज retail investors are heavily invested now in speculative positions in the derivative segment, not in the cash market, but it is giving us some indication of how the cash market is going to be like next week. So what's your take reading the information coming out of derivatives?
You know, derivatives mein we have to look at the order book, and the order book on the pulls on the put side or the call side, you know, that indicates where the large players are taking positions. So it's not a foolproof indication, because large players, they take heavy positions and they also change their positions.
Which way the index is heading,
yeah,
basically.
And they also hedge their position. So because they act so fast that for retail investors, it is very difficult to take any positions based on the open interest. Of course, it is there for the large players because, you know, they hedge their positions so they can get away with the volatile movement. But for the retail investor, the best thing is not to take positions in the options, because it's very risky. And unless, you know, one is expert, it's better to avoid those.
But they are into the derivative segment. Looking at the cash segment, FIIs were the net sellers today. to the tune of more than 2,000 crore rupees. Are they going to continue to sell in this market coming next week as well? Because they're the reason why the market has fallen. It's because of DIIs who were the net buyers to the tune of 2,700 crore rupees that we saw the Sensex go up by 260 points itself. Will that continue next week? Do you see DIIs continuing to buy, or do you see them changing their tactics to a sell position now?
No, DIIs will continue to buy because, you know, they look for, they buy on dips, you know, what is said in the market. You know, DIIs, because they are a long-term players, they have a vested interest in the Indian market, so they'll continue to buy. FIIs, you know, they book profit, and FII money moves because of factors which are other than what is happening in India. Because suppose if the interest rates are elevated in the US, they'll shift the capital from India to US or maybe to other destinations from where they are getting better returns. So FIIs will continue to play their own game, but DIIs are there, they are in the market, so they look for opportunity to buy, and for them it's an opportunity to buy, so they have invested on 16,000-17,000 crores.
Any triggers for the market next week, apart from the fourth quarterly results for the quarter and consolidated, any triggers that you can think of that's part of the economic calendar?
Yeah, because, you know, today we got this IIP data, which shows that the IIP for the last financial year grew by 5.8% as compared to 5.2% in the previous financial preceding financial year, which means that in 2023-24, our IIP was 5.8% as compared to 5.2% earlier. And the other trigger is a little bit away, you know, that's the fourth quarter GDP data will be announced on 31st May, and the bigger trigger, you know, will be in June, when in the first week of June, the RBI will announce its bi-monthly monetary policy.
यहाँ पर हम आम श्रोताओं के लिए जो हमारे कह लें कि खुदरा निवेशक हैं और मार्केट में थोड़ा सुना करते हैं उनके लिए आपकी सलाह समझना चाहेंगे कि बाजार की जो अभी दिशा है पिछले कुछ सत्र में हमने बड़ी गिरावट देखी ये सप्ताह दो महीने के दौरान सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हुआ और आज फिर वाली रही है ऐसे तेज उतार चढ़ाव में उनका अपना निवेश किस तरह होना चाहिए कि उनके खरीदने की या कह लें कि बाजार में जो ऐसा चलन हो तो उन्हें क्या करना चाहिए
ये जिस तरह का बाजार जैसे अभी हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला सडनली यू नो कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एकदम से गिरावट आ गई तो ये देखिए ये जो एक जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अपना देखना है तो उसको तो यही होता है कि भाई जब गिरा तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अच्छी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए और उससे अच्छे रिटर्न्स भी आ रहे हैं तो उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है लेकिन ये जरूर देखना है कि हमें जो है वो जिसको बोलते हैं कि सस्ते शेयर्स नहीं लेने हैं क्योंकि शायद यही एक डिफरेंस होता है कि स्टॉक मार्केट में और सुपर मार्केट में सुपर मार्केट में हम सस्ती चीज देखते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में शायद ऐसा नहीं होता है हमें वैल्यू बाइंग करनी चाहिए और जो अच्छी कंपनियां उनके शेयर खरीदने चाहिए
फंडामेंटल्स
देखना
चाहिए। आइए खबरों का सिलसिला बढ़ाएं चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां आज प्रमुख बाजारों में तेजी दिखी है सबसे अधिक बढ़त में रहा आज हांगकांग जहां हेंगसेंग सूचकांक 2.25% लाभ के साथ बंद हुआ उधर दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.57% की वृद्धि हुई जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.41% लाभ के साथ बंद हुआ सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.75% की वृद्धि हुई वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स मामूली बढ़त में रहा यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक सभी प्रमुख बाजारों में तेजी ही दिख रही थी फ्रांस का कैक 40 0.82% लंदन का फुटसी 100 0.78% और जर्मनी का डेक्स 0.63 बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे
Just looking at the Asian markets right now, Chandrasekhar ji, what's the position on China? Because there is now fresh news coming out that Germany's principal trading partner is no longer China, but it's now the US. And the data, which has been relatively opaque from China that's coming out, is that their unemployment has now gone up to 21% as far as the month of May is concerned, the data that's coming out. Plus, their trade figures has also come down by 21% when it comes to their relationship with the United States of America. So how do you link that with the Chinese stock market right now? You have the Hang Seng Index, which actually it's at Hong Kong. It went up by 2.25%. Shanghai Composite Index ended marginally up. Despite macroeconomic data, which is challenging for China, the stock market went up.
China, as you said, rightly said, the China data is quite opaque in China. So we really don't know what is happening in China. But what is significant is the other markets. The other markets like South Korean market or Japanese Nikkei or, you know, the other Asian markets, you know, they go mostly in line with the Wall Street. And since the signals are from the Wall Street and the Wall Street, the futures market, the indications are that markets have stabilized and they're looking up. So other markets, you know, follow Wall Street. And we fall in, say, when the market starts in the day, the Nikkei, then Australian market, then Hang Seng, then this Korean market, and then India, then we go to this European markets like UK market, German market, and then finally at the US market. So the whole cycle, if you see that it's gradually moving up.
You feel that the China Plus strategy is now working now with the companies looking to close their business and factory units in China and move to other locations so that they are properly hedged, including the US, because manufacturing is coming back there.
The companies are looking at other options because they feel that the trouble in China could get longer and sustained. So Vietnam is benefiting from this phenomena, and some companies are shifting to Vietnam. Maybe India will benefit, like Apple has come. Maybe some other companies might also look for to shift their operations to India. So China is a trouble spot, but I think the overall the global economy is now stabilized and is looking up. So we need not worry on Chinese count.
यहाँ पर चंद्रशेखर जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे. मेड इन इंडिया का जो आह्वान था और जो कोरोना के बाद चीन प्लस एक यानी एक ही जो बनी, उससे भारत कितना लाभान्वित हुआ है?
भारत लाभान्वित तो हुआ ही है. देखिए, जैसे एप्पल हुआ या और भी कुछ कंपनीज हैं जो कि भारत की तरफ देख रही हैं, लेकिन उसके लिए भारत को अपना जो ग्राउंड है उसको और ज्यादा तैयार करना पड़ेगा और एक रेड कार्पेट वेलकम देना पड़ेगा और उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा. ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जैसे एलन मस्क आने वाले थे वो नहीं आए हैं. मे बी शायद आते तो वो कुछ और इन्वेस्टमेंट होता है यहां पे और शायद आगे आए और इन्वेस्टमेंट करें. सो हमें अपना जो है अपना ग्राउंड तो मजबूत करना ही पड़ेगा जिससे कि जो कंपनीज जो चाइना को छोड़ना चाहती हैं वो यहां पे आ सके.
Let's move on to the U.S. stock market now. The Dow Jones Industrial Average closed higher yesterday, the seventh straight daily advance for the benchmark, as all three major U.S. stock indices gained after weekly jobless claims data offered fresh hope for interest rate cuts. The S&P 500 gained 0.51%, while the NASDAQ Composite jumped 0.27%. The Dow Jones Industrial Average ended 0.85% higher. There seems to be a bull market right now in the U.S. Employment has gone up. There are right now news coming in that there's a lot of relocation of manufacturing back to the U.S. again. All in all, how would you rate the U.S. economy despite its fiscal deficit? But the U.S. dollar is also strengthening at 105.23, according to the data right now. But at the same time, you also have the equity market going up and the bond market going up. So how would you look at the U.S. economy?
Yeah, you know, bond market is linked to the Fed rates. You know, there are expectations that Fed might cut will be a strong word, but they may slowly, gradually move to the, say, anchor position as far as the interest rates are concerned. And if they do it, you know, it will impact not only the U.S. but the whole world. The second is the job data is good, and the latest job data is good, and this indicates, you know, that things are picking up in the U.S. And if the U.S. picks up, you know, the whole world picks up, you know, because U.S. is the, in fact, U.S. is the mother of all markets, and so U.S. Market, everyone watches U.S. market, and it gives clues to other markets. So things are looking up in the U.S. and if they do so. Finally, whenever Fed decides to cut rates, it will give a boost to the markets.
Let's have a look at the Forex story now, which is part of our headlines. As for the latest data released by RBI, India's Forex reserves rose by $3.66 billion to $641.59 billion for the week ended 3rd of May. Previously, Forex reserves contracted by $2.41 billion to $637.92 billion for the third consecutive week as on the 26th of April 2024. According to the weekly statistical supplement released by RBI, foreign currency assets surged by $4.45 billion to $564.16 billion. Expressed in dollar terms, the FCAs include the effect of appreciation or depreciation of non-US units like the euro, pound and yen held in the forex reserves. Gold reserves dropped by $653 million to $54.88 billion, whereas SDRs, special drawing rights, were up by $2 million to $18.05 billion. Reserve position in the IMF decreased by $140 million to $4.99 billion. Briefly, how important is the dollar valuation and gold to our forex reserves, which is why it's going up?
The valuation is one, but the fact is that our forex reserves have been continuously rising. There was a blip for some weeks, but then again it has started rising, which is good, which is an indication, you know, which is an indication that the economy is doing well, and people are, these reserves are rising despite FII drawdown. So, forex reserves, you know, much also depends upon the oil, crude oil prices in the international market, which is our major purchase. And services is another sector which decides, you know, the money coming in. So, the indications are that our forex reserves are reasonably, at an elevated level, and they are good.
Aye. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں چلیں صرافہ بازار گھریلو صرافہ بازار میں آج سونے اور چاندی کی چمک تیز دکھ رہی ہے سماچار تیار کیے جانے تک دونوں کے دام لگ بھگ 1% بڑھت کے ساتھ چل رہے تھے ملٹی کمیونٹی ایکسچینج میں جون میں آپورتی کی جانے والے سونے کا مولی 1146 روپے یعنی 1.6% بڑھت کے ساتھ 72785 روپے پرتی 10 گرام پر چل رہا تھا وہیں جولائی انوبندھ والی چاندی 942 روپے یعنی 1.11% تیزی کے ساتھ 85,441 روپے پرتی کلو کے استر پر کاروبار کر رہی تھی ویشوک بازار کی اور چلیں تو وہاں بھی دن کے کاروبار میں سونے کا مولی 1.68% بڑھت کے ساتھ $2,379.70 پرتی اونس پر تھا چاندی بھی 1.67% بڑھ کر $28.84 پرتی اونس پر کاروبار کر رہی تھی یہاں بہت سنکشپت ٹپڑی آپ کی لینا چاہے گی سونے پر سونے کے مولی میں لگاتار تیزی کے پیچھے کیا کارن ہے
دیکھیے آج شاید اکشے تتیا ہے
جی جی جی
لوگ ہم لوگ جو ہے وہ سونا زیادہ ہی خریدتے ہیں
جی جی
لیکن جیسے تیزی کا ہے اس کے کارن تو دوسرے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے سینٹرل بینک میں پرچیز کرتی ہیں گولڈ یا جیسے جو مائنز ہیں وہاں پہ کچھ پرابلمس ہوتی ہے یا ان کا پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے تو یہ سارے کارن ہوتے ہیں جو گولڈ کی ویلو کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں
Well, let's have a look at the crude oil market now. Brent crude oil futures was up by 0.69% to trade at $84.46 per barrel, whereas WTI was higher by 0.81% at $79.90 per barrel when reports last came in.
بس یہیں پر شوتاؤں کی اور سے چندرشیکھر جی ہم آپ کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہیں گے
Thank you.
And let's have a look at the closing headlines now. Benchmark indices rise after the three-day hiatus. Sensex ends 260 points higher. Nifty tops 22,050 points. India's foreign exchange reserves jump by $3.66 billion to $641.59 billion. And gold futures surge 1,142 rupees to 72,785 rupees per 10 grams. Silver futures also jump over 1%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.
It's a